وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. جی، پچھلی کلاس میں کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ یاد ہے کسی کو؟ جی ریحان بھائی، علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اور آخری چیز کیا پڑھ رہے تھے؟ آخری چیز پتہ ہے؟ اچھا، مجھے یاد دلائے، بالکل بھی یاد نہیں ایکچولی ایگزیکٹلی ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا کہ نہیں. اچھا ٹھیک، جب یعنی ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کری تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ، یعنی ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کتنا اچھا خطاب ہے اور کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کسی کو یہ کہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تمہارے اوپر یہ وقت آئے گا نا، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے، راضیہ مرضیہ والی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا، جمع قرآن، قرآن مجید کا جمع، یا شاید بس اس کے بعد کرنا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہاں تھوڑا سا ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ نہیں، وہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں یہ خاص بات ہے، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ جو ادھر چلتا ہے وہ ادھر بھی چلتا ہے، چلتا ہے وہ ادھر بھی چلتا ہے. تو ادھر بھی جمع قرآن چل رہا تھا یعنی انکلز کی کلاس کے اندر، اور یہاں بھی جمع قرآن ہی چل رہا ہے. تو بچوں کی کلاس کے اندر بھی شروع ہو چکا تھا کہ جنگ یمامہ میں 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر اس طریقے سے حفاظ کرام دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید تو ان کے سینوں میں محفوظ تھا، اور کوئی ایک کاپی کی شکل میں قرآن مجید موجود نہیں ہے. اگر کسی کے پاس قرآن مجید ہے بھی نا پورا لکھا ہوا، تو ایسے ہے کہ تھوڑا سا قرآن مجید جو ہے وہ پتے پہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا قرآن مجید جو ہے وہ کسی ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا قرآن مجید کسی درخت کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، بارک آف اے ٹری، اور تھوڑا سا کسی چیز پہ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید موجود ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو چیزیں گم ہو سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پھر قرآن مجید تو ضائع ہو جائے گا، ہم ایک آیت بھی ضائع نہیں کر سکتے، بھول نہیں سکتے قرآن مجید کی. ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی کا کلام ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے ایک مصحف کے اندر، یعنی ایک کاپی کے اندر، رجسٹر کے اندر، ٹھیک ہے. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ ابوبکر صدیق کے لیے سب سے اہم بات جو تھی وہ پریزرویشن آف دا دین تھی، ٹھیک ہے. جیسے نبی علیہ السلام سے دین ہمیں ملا ہے exactly ویسے ہی ہم نے محفوظ کرنا ہے، اور ویسے ہم نے آگے اگلی نسل کو پہنچانا ہے. انہوں نے لکھا کہ ابو بکر صدیق had a very high standard for others, set a very high standard. ہاں وہ ایک الگ بات ہو رہی تھی، لیکن یہ ابھی جمع قرآن کے بارے میں بات شروع ہو چکی ہے. تو لیکن عمر رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ جو مشورہ دے رہے تھے نا اس کے اوپر ان کو بالکل شرح صدر تھا. شرح صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہی واز ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ، کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ بہت اہم، یہ انتہائی ضروری چیز ہے. تو اس وجہ سے اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈڈ ناٹ بج، یعنی وہ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے اوپر انہوں نے بالکل بھی وڈرا نہیں کیا، بلکہ وہ لگے رہے لگے رہے لگے رہے، بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کنونس ہو گئے. ठीक है, और इसके बाद यानी वो कन्विंस हो गए कि हाँ ये काम जो है ना बेहतर ही बेहतर है, और ये दीन की प्रिजर्वेशन ही के लिए है, इसका मकसद प्रिजर्वेशन ऑफ द दीन ये, क्योंकि कुरान दीन क्या है, कुरान का सबसे सॉरी दीन का जो सबसे अहम और नंबर वन सोर्स है कि जहां से आप दीन हासिल करते हैं, दीन की डिटेल्स दीन के अहकाम हासिल करते हैं, वो कहां से हासिल करते हैं, नंबर वन वो क्या है, कुरान मजीद, ठीक है ना। तो अगर कुरान मजीद की कुछ आयात गुम हो गई या कुछ पोर्शन गुम हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि दीन तो फिर आप प्रिजर्व नहीं रहा ना, तो ये दीन की प्रिजर्वेशन के लिए ही है। तो अबू बकर सिद्दीक खतन जो है वो कन्विंस हो गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन दोनों ने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। ये जैद जो है ना, ये याद रखा करें, तो जैद बहुत सारे सहाबा थे, तो उनमें से ये जैद बिन साबित ये एक जूनियर सहाबा थे, सहाबी थे, और बड़े जहीन थे, और इनको एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने इबरानी जुबान सीखने के लिए भेजा था यहूदियों के पास, ठीक है, कि सीख करके आओ। तो ये बहुत जल्दी सीख करके आ गए, बल्कि एक किताब में पढ़ा कि एक हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी लैंग्वेज सीख करके आ गए थे। लैंग्वेज क्यों सीखनी थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पास खतूत जो है ना वो उनकी लैंग्वेज में आते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ना तो वैसे भी नहीं आता था और किसी दूसरे मुसलमान को भी पढ़ना नहीं आता था। तो फिर जो यहूदियों के खत आते थे ना, तो उसको पढ़वाने के लिए खुद किसी यहूदी को बुलाना पड़ता था कि भाई तुम पढ़ो, और तुम्हें तो अरबी भी आती है, तुम्हें इब्रानी भी आती है, तो तुम उसको पढ़ो और फिर अरबी में हमें ट्रांसलेट करके बताओ। तो अब वो चूंकि काफिर था और यहूदी तो वैसे भी मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हुए, तो अब वो झूठ बोल दे कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, हालांकि उसमें वो ना लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनको भेजा था कि तुम आप लैंग्वेज सीख करके आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कभी दुनियावी मकसद की खातिर, दुनियावी यानी बल्कि दीनी मकसद की खातिर दुनियावी उलूम हासिल करना ये जायज है, ठीक है। दुनिया के उलूम जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना या और इंजीनियरिंग या और मैथमेटिक्स और इस तरह के साइंस एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये दीनी मकसद की खातिर यानी अल्लाह की रजा की खातिर ये इल्म भी हासिल करना जायज है, और बल्कि अगर बड़ा हुक्म दे तो फिर तो सवाब का सबब बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो उन्होंने जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि अच्छा, अब अबू बकर सिद्दीक रहता है जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ कि उमर जो है ना वो मेरे पास आए, उमर वहीं पर मौजूद थे रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते हैं उमर मेरे पास आए और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, तो मैंने तो कहा कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर जो है ना ये मुझे बोलते रहे और फिर बिलाखिर मैं तैयार हो गया इस काम के लिए। या दूसरी रिवायत ये भी पढ़ी कि उनसे कहा, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि जो कुरान मजीद के जितने भी आयात वगैरह मौजूद है ना उन सबको कंपाइल करना शुरू करें एक मसहफ के अंदर। जी फरहान जी, ये 100% हाफिज, ठीक है। तो और भी बहुत सारे साहब हाफिज थे लेकिन ये उनमें से एक थे, तो इनसे कहा कि आप कंपाइल करें। तो इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही बात कही, जैद बिन साबित ने भी ये बात कही कि जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया तो आप कैसे कह रहे हैं वो काम करने को, ठीक है। यानी अबू बकर सिद्दीक रहता तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे और सबसे ज्यादा सीनियर थे प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान के ऊपर सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरे सहाबा भी इस बात की अहमियत को समझते थे कि हमें दीन को प्रिजर्व करना है। तो फिर उनके साथ भी यही हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रहता उनको कहते रहे कि नहीं ये काम तो बेहतर ही बेहतर है, ये काम तो अच्छा ही है, ये काम तो बेहतर ही बेहतर है, हत्ता कि जैद फरमाते हैं कि मैं भी कन्विंस हो गया और फिर मैंने जो है ना वो काम शुरू कर दिया, ये लोगों को इकट्ठा किया, उनसे जो है वो उनके पास जिस जिस शक्ल में कुरान मजीद मौजूद था उसको जो है वो मंगवाया, और फरमाते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना ये जो इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी ना, ये इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर ये लोग मुझे किसी पहाड़ को उठाने का कहते ना तो वो मेरे लिए जो है ना आसान होता इसके मुकाबले में, ठीक है ना। वो ये बात क्यों कह रहे थे, ये बात क्यों कह रहे थे कि पहाड़ को उठाना, फादर का हम इसका जवाब दे सकते हैं।
जी
जी राइट, उनका जहन जो है ना वो यकीनन गया होगा सूरह अहजाब की उन आखिरी आयात की तरफ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लो अनजलना हादल है? सूरह हशर की
नहीं
नहीं, लेकिन फिर आप किसी दूसरी आयत की बात कर रहे हैं, अला जबल लराईतहु खाशिअ मुतसद्दिअ मिन खशयति अल्लाह, ये सूरह अज़ाब के आखिर में है, सूरह हशर के
बिल्कुल
आखिर में। अच्छा, नबी हुफाज जीत गए। तो अब जो है ना, वो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हम इसको, अच्छा नहीं, तो अज़ाब के आखिर में भी है, इन्ना अरदना अमानती अल समावाती वल अर्द वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वो अशफक ना मिनहा वो हमल अहल इंसान, ठीक है ना, इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, ठीक है ना। उसके अंदर भी पहाड़ का जिक्र है ना, कि हमने इस अमानत को, अमानत क्या है, अपने कलाम को, अपने दीन को, ये है इस अमानत का मतलब, हमने आसमानों के सामने पेश किया कि तुम इस अमानत को लेते हो, तो आसमानों ने जवाब दिया अल्लाह नहीं, वी आर नॉट केपेबल ऑफ इट, एक्सक्यूज कर लिया। और फिर जो है ना, वो जमीन के ऊपर पेश किया, जमीन ने भी एक्सक्यूज कर लिया, फिर पहाड़ों के ऊपर पेश किया, पहाड़ ने भी एक्सक्यूज कर लिया, ठीक है ना। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये पहाड़ से ज्यादा भारी था ये बोझ रखना। बहरहाल उन्होंने मेहनत शुरू करी, उसकी बहुत सारी तफसील है, जो कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो हमारी जो मंडे और वेंसडे की आज की क्लासेस चल रही है शाम को, तो उसके अंदर हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर करते करते जमाए कुरान मुकम्मल हुआ और एक मसहफ की शक्ल में ये बन गया, और ये अबू बकर सिद्दीक रहा था के बहुत बड़े कारनामों में से एक कारनामा था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आखिरी एक बात जो है ना, वो करके हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी अबू बकर सिद्दीक रहा था से ही मुतअल्लिक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात, बड़ी रेलिवेंट बात एक लिखी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का मामूल ये था कि जब उनके सामने कोई इशू आता, कोई मसला पेश आता ना, यानी कोई क्वेश्चन आता, ठीक है, तो उसके लिए वो सबसे पहले आंसर कहाँ पे तलाश करते थे कि इसका जवाब क्या होगा, इस मसले का हल क्या होगा, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ तलाश करते थे उसका हल, ठीक है। आसान था जी, कुरान मजीद में, ठीक है, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस मामले के बारे में क्या फरमाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद में अगर उसका जवाब उनको नहीं मिलता था तो फिर वो कहाँ जाते थे, ठीक है, वो सुन्नत की तरफ जाते थे। सुन्नत की तरफ कैसे जाते थे, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, ठीक है, चले, कुरान तो सहीफों में लिखा हुआ है ना, पारचों में लिखा हुआ है और हड्डी पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, तो कुरान मजीद की तरफ रेफर कर लेते थे, या अब जब मसहफ बन गया तो मसहफ की तरफ रुजू कर लेते होंगे, मसहफ को देख लेते होंगे, ठीक है। हाफिज भी थे, लेकिन देख करके पढ़ना, इसके भी फायदे होते हैं। अच्छा, जब कुरान मजीद में नहीं मिलता था तो फिर वो सुन्नत की, कॉल ऑफ
अच्छा
फेल, तो कॉल ऑफ फेल किधर, दरख्त पे लिखे होते थे ये, जी एग्जैक्टली, ठीक है। एक तो उनको खुद भी नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातें याद थी, ठीक है ना, तो वो उन बातों को सोचते होंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके, इस टॉपिक के ऊपर क्या बात फरमाई, लेकिन अगर उनको खुद कोई ऐसी बात याद नहीं आती थी तो फिर वो क्या करते थे, वो सहाबा कराम को जमा करते, दूसरे दूसरे सहाबा को, और उनसे पूछते थे कि क्या तुम में से किसी ने इस मौजू के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम से कोई बात सुनी है, ठीक है। तो अगर किसी सहाबा को कोई बात याद होती थी कि हाँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी है इस टॉपिक के ऊपर, तो वो बता देते थे और बस खलास फैसला हो जाता था, नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया बस, ठीक है, दैट इज द आंसर, ठीक है। लेकिन जब वो सहाबा के पास भी कोई ऐसी चीज नहीं मिलती थी, ठीक है, कोई क्लियर कट आंसर जो है वो उस मसले के बारे में सहाबा के पास भी नहीं मिलता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाया, तो फिर वो क्या करते थे, फिर तीसरा काम क्या करते थे, ठहर जरा ऑनलाइन वालों के से भी देख लेते हैं, हाँ, सहाबियों से पूछते थे, सहाबा से पूछते थे, फिर वो, अच्छा माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने, इस्तिखारा करते थे मुझे जो है ना इसकी जरूरत यहाँ पर होती है छोटा आदमी अच्छा, तो सुनना मीन्स टू डू वर्क, हाउ द प्रोसेस मीन्स टू डू वर्क, इस्तखारा ऐसे नहीं किया जाता, बल्कि वो करते थे, इज्तिहाद करते थे, ठीक है। नहीं, अभी वो इज्तिहाद नहीं करते थे, ठीक है, बल्कि वो तीसरा काम क्या करते थे, पहले तो कुरान मजीद में चेक कर लिया, दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में चेक कर लिया, यानी सहाबा इकराम से पूछ लिया, ठीक है ना, हदीस में से चेक कर लिया, इसका मतलब है ये कि हदीस में से चेक कर लिया। और तीसरी चीज क्या करते थे, कभी अंकल से भी पूछ लिया। आपको तो पता है, मुझे पता है कि आपको पता है जी अंकल, सही सब बताया। सहाबा इकराम से मशवरा करते थे, ठीक है ना, और मशवरे में जो बात तय हो जाती थी, यानी सहाबा की मेजोरिटी जिस बात पर मुत्तफिक हो जाती थी, तो वो फिर उसका सोल्यूशन बना लेते थे, ठीक है, वो आंसर होता था। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इजमा कहते हैं, इसको इजमा कहते हैं, ठीक है। इजमा का मतलब होता है कंसेंसस, अंग्रेजी में कंसेंसस, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल हु हैव नॉलेज एग्रींग अपॉन समथिंग, इसको इजमा कहते हैं, ठीक है ना। स्कॉलर्स का किसी बात के ऊपर इत्तेफाक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, इसको इजमा कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वो हमारे सामने तीन चीजें आ गई कि इस्लाम जो हमारा दीन है, ठीक है ना, ये दीन किस चीज का नाम है, किस चीज को दीन कहते हैं, चिरागा करने को लाइटिंग, या हलवे बनाने को, या हाजिरियां देने को, किस चीज को दीन कहते हैं, दीन क्या चीज है, रिवीजन हो रही है तो सारी की सारी, अल्लाह के हुक्मों का नाम, ठीक है ना। हमारा दीन क्या है, ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, ठीक है, अहकामात के बाद बाकी चीजें आती हैं, असल चीज अल्लाह ताला के अहकामात है। तो ये अहकामात हमें कहाँ से मिलते हैं, अल्लाह ताला की आवाज आती है, राइट, जैसे इन्होंने लिखा इस्तिखारा करते हैं तो क्या अर्श पे जाते हैं, वहां से पूछ करके आते हैं, राइट, या दुआ करते हैं और दुआ में अल्लाह ताला बता देते हैं कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि हम कुरान मजीद को देखते हैं, वहां से अल्लाह ताला का हुक्म अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अल्लाह के कलाम से मिल गया, नहीं तो हम अल्लाह का हुक्म कहाँ तलाश करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के अंदर तलाश करते हैं, ठीक है ना। अगर नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में भी हुक्म नहीं मिला किसी टॉपिक के ऊपर, तो फिर हम सहाबाए कराम के इजमा में तलाश करते हैं, ठीक है, कि सहाबाए कराम का किस बात के ऊपर इजमा हो गया, तो वही अल्लाह ताला का हुक्म, वही अल्लाह ताला का हुक्म, कैसे, क्योंकि सहाबा का दिल चाहता था कि हमारा इजमा जो है ना वो अल्लाह का हुक्म बन जाए, इस वजह से, बल्कि इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, आया तो मुझे याद नहीं है,
क्योंकि
क्योंकि कुरान मजीद में हुक्म है इस बात का कि मोमिनीन के रास्ते के ऊपर तुम चलो, ठीक है, मोमिनीन जिस बात के ऊपर एग्री हो जाए ना, तो ये इसके ऊपर तो अमल कर, तो ये अल्लाह का हुक्म ही है। और एग्जैक्टली आया जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, डिस्कस कर चुके, बल्कि मुझे याद है इसी घर के अंदर ये वाली बात हुई, ठीक है, जब वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया वाली आयत, इसके इसके दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, एक दूसरी आयत है, अगर किसी को यहाँ पर ऑनलाइन याद है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो सोर्सेस है ना अल्लाह ताला के हुक्म की, ये तीनों सोर्सेस है, ठीक है ना, और यही हमारा दीन है, यही इस्लाम है। इस्लाम इज नॉट नेम ऑफ व्हाट, साइंस क्लास, इस्लाम इज नॉट नेम ऑफ
ट्रेडिशन
ट्रेडिशंस, कल्चर, राइट, तौर तरीके, रिवायात, जो बस कुछ लोगों ने मिलकर के जो है ना वो तय कर लियो, नहीं, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज का नाम नहीं है। इस्लाम अल्लाह ताला के हुक्मों का नाम है, इस्लाम जो है वो कुरान में हदीस मुबारका से अल्लाह ताला के जो हुक्म मिलते हैं उनका नाम है, या ये कि सहाबा कराम के इजमा से जो हमें अहकाम मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा दीन जो है ना, ये असल में अल्लाह ताला के हुक्म ही है, ये अल्लाह ताला के हुक्म ही है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई मैं कोई काम जो है ना वो इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि ये इस्लाम में है, मैं इस वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तब मैं करूं, तो ये बात क्या हुई फिर, कोई अगर इस तरह से कहे, जो कि कुछ लोग कहते हैं इस तरह से, ठीक है, कि मैं ये काम इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि ये इस्लाम में है, ठीक है, बल्कि मैं ये काम इस वजह से करना चाहता हूँ क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तब मैं ये काम करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये समझ रहे हैं कि इस्लाम जो है ना किसी और चीज का नाम है और अल्लाह के हुक्म किसी और चीज का नाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम इज इक्वल टू अल्लाह ताला के अहकाम, जो इस्लाम के अंदर है वो अल्लाह ताला का हुक्म ही है, और जो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है वो इस्लाम नहीं है। जो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है वो इस्लाम नहीं है। वो क्या है फिर, उसको क्या कहते हैं फिर, उसको क्या कहते हैं? जो अल्लाह का हुक्म नहीं है तो वो इस्लाम नहीं है, तो फिर वो क्या है? बिदात, राइट? उसको बिदात कहते हैं, ठीक है, उसको बिदात। और थोड़ी सी और अगर मजीद इसमें चले, उसको रसूमात भी कहते हैं, रसूमात, ठीक है, और उसी को अंग्रेजी में कल्चर वगैरह भी कह देते हैं। अच्छा, तो अबूबकर सिद्दीक रहमतुल्लाह जो है वो इस तरीके से फैसला किया करते थे किसी चीज के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो है ना, वो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक अबूबकर सिद्दीक रहमतुल्लाह की जिंदगी से पढ़ना है, ये एक बहुत अहम टॉपिक है, और वो है बागे फिदक, बागे फिदक का मसला, ठीक है। फिदक जो है ना, ये हमने जंगे खैबर पढ़ी थी, 6 हिजरी में जंगे खैबर हुई थी, तो खैबर एक इलाका था मदीना मुनव्वरा से कोई 40 किलोमीटर दूर, तो वहां पर बहुत सारे यहूदियों ने ना अपने कैसल्स बनाए हुए थे, किले वगैरह, ठीक है। तो यहूदियों को जब यहां से निकाल दिया गया था मदीना मुनव्वरा से, तो इन्होंने जाकर के खैबर के मुकाम पे अपने बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बना लिए थे, और वहां से बैठ करके ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर यहाँ पर हमला किया पूरी फौज को लेकर के, और फिर एक एक करके उन कैसल्स को जो है वो फतह किया था। तो वहां पे ना फिर बहुत सारा माल गनीमत भी मुसलमानों के हाथ आया था, और बहुत सारी जमीन भी जो है वो मुसलमानों के हाथ आई थी। उनमें से एक जमीन जो थी ना, एक बाग था, ये फिदक का बाग, ठीक है। तो ये भी फिर यहूदियों के साथ जब ये सारी बात हुई, तो इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, और फिदक का बाग जो है ना, ये दरअसल जंग के नतीजे में मुसलमानों के हाथ में नहीं आया, बल्कि ये सुलह के नतीजे में, ठीक है ना। सुलह का जो होता है ना, पीस एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो कभी उसकी एक 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 बाकायदा एक पेमेंट भी होती है कि आप हमें इतने पैसे दे दें, ठीक है ना, इसके बदले में हम आपके साथ सुलह करते हैं और हम आपको जो है वो पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिदक का बाग जो है ना, वो सुलह के नतीजे में मुसलमानों के पास आया था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया अल्लाह के हुक्म से, कि इस बाग को 36 हिस्सों में डिवाइड किया, अंदाजन 36 हिस्से जैसे कि इस बाग के लगाए, सही है। बाग के 36 हिस्से कैसे लगाए जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रीज की बुनियाद, ठीक है ना, क्योंकि खजूर का जो बाग होता है वो अमूमन इसी तरह से होता है कि जितनी अवेलेबल प्लेस होती है ना, उसके ऊपर खजूर के दरख्त लगा दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रीज को काउंट करते हैं और फिर उसको जो है वो हाफ कर देते हैं, 1,000 दरख्त हैं तो 500 इधर 500 इधर, या 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 250 इधर 250 इधर 250 इधर 250 इधर, इस तरह से। तो इसके जो है ना वो 36 हिस्से बनाए, और 36 हिस्सों में से 18 हिस्से जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के अपने पास रहे। तुम दोनों को जरा साइड पे करना पड़ेगा, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं वहाँ साहब, माशाल्लाह। अब्बू को भेज, शौक तो बहुत होता है भेजने का, लेकिन जाहिर आप छोटे हैं, ठीक है, आप इधर आ जाएं, उधर उधर कोने में आ जाएं ना, आप मुस्तकिल बातें करते रहें वहाँ पे, आप इधर मुतवज्जो हो जाएंगे। आप तो बड़े हो गए अभी, तो छोटा है अभी, नहीं बराबर, सही नहीं पता। बहरहाल, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसके जो हाफ हिस्से थे ना वो अपने पास रखे, और बाकी हाफ जो है वो फिर मुजाहिदीन में दूसरे लोगों में तकसीम कर दिए, सही। अब ये जो हाफ हिस्से नबी अलैहिस्सलाम के अपने पास रहे ना, ये अल्लाह के हुक्म से ही रहे, लेकिन ये इसका मामला ये था कि ये नबी अलैहिस्सलाम की बजाहिर तो प्रॉपर्टी बन गई, मिल्कियत बन गई, ठीक है ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी मिल्कियत के तौर पे ट्रीट नहीं किया कि ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरा मेरा बाग है, ऐसे नहीं किया, बल्कि इसको जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा दूसरों के ऊपर खर्च किया, ठीक है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली वाले थे उन्हीं पे खर्च किया, अहले बैत थे बनू हाशिम के जो गरीब गुरबा थे उनके ऊपर, जो जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां होती थीं तो उनको जो नान नफ्ता देते हैं, यानी आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कैसे आपका जो है गुजारा चलेगा, इसको नान नफका देना कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम इस बाग की जो कमाई आती थी यानी खजूर जो आती थी, तो उससे जो है ना फिर अपने घर वालों का इंतजाम करते थे और गरीब गुरबा बनू हाशिम के उनके ऊपर इसको स्पेंड करते थे, गरीबों की जो है वो शादियां करवाते थे, बच्चियों की शादियां वगैरह इस तरह। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कभी इसकी इस तरह से अपने ऊपर ओनरशिप नहीं ली कि ये मेरा है और बस मैं इसको जो है ना वो अपने अय्याशी के लिए खर्च करूंगा, अपने जो है वो माल दौलत को बढ़ाने के लिए खर्च करूंगा, कभी ऐसे नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम। इसको वक्फ कहते हैं, ठीक है ना, वक्फ कहते हैं कि वक्फ में ये होता है कि आप बेसिकली यानी इसको कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इंचार्ज होता है ना वो उसका मालिक नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो उसका वकील कहलाता है। ठीक है, वकील, ठीक है, या वली मुतवल्ली भी कहलाता है। ठीक है, उसका काम ये होता है कि उस वक्फ की जो आमदनी होगी तो उसको जो है वो उस मकसद पे सर्व करे जिस मकसद से वो वक्फ किया गया। ठीक है, तो मालिक का मतलब ये होता है कि दिस इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद इट, आप जो चाहें उसके साथ करें, ये आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। ठीक है ना, इसको मालिक होना कहते हैं। और वक्फ का मुतवल्ली होने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि आप इसको उस मकसद पे ही खर्च कर सकते हैं जिस मकसद के लिए इसको वक्फ किया गया। तो ये बेसिकली वक्फ की प्रॉपर्टी है। जी
तो सही हो सकते हैं
हाँ, वक्फ की चीज को ये आपकी मिल्कियत है ही नहीं, आप वापस कैसे लेंगे। अच्छा हाँ, मतलब अगर आपने वक्फ किया है कि जी मेरे पास एक बाग था, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूँ किसी मदरसे के लिए। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आपने वो बाग जो है ना वो मदरसे के लिए वक्फ कर दिया, तो उस बाग की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी इनकम होगी, तो उससे फिर उस मदरसे के अखराजात चलाए जाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये आपने मदरसे को वक्फ कर दिया, अब आप इसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है ना, वापस इसको जो है ना अपनी मिल्कियत के अंदर नहीं ले सकते, सही है, ये वक्फ हो गया। तो ये जो फिदक का जो बाग था ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास मिल्कियत के तौर पे था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा इसको वक्फ के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है जी,
किसी
नहीं फिर उसका करते क्या है शरीयत में।
उसी से रिलेटेड कोई और मसला ढूंढा जाएगा और फिर उसके ऊपर जाएगा
हाँ, तो
जैसे
वक्फ
हम
के जो
पे
बाकायदा ना उस इस्लामी हुकूमतों में, इस्लाम के जो स्टेट्स होती थी उनके अंदर ये होता था कि वक्फ की बाकायदा आज भी है, बल्कि वक्फ की बाकायदा एक गवर्नमेंट एक अथॉरिटी होती है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही ये होता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को जो है ना वो मैनेज करे। अब अगर किसी मदरसे के लिए वक्फ था, तो आपने जैसे कहा कि अगर वो मदरसा खत्म हो गया किसी वजह से, कोई भी वजह हो गई खत्म हो गया, तो अब क्या करें, तो ये जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी ना, डिपार्टमेंट होगा ना, ये फिर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव तलाश करेगा कि अब इसको किसी और काम के अंदर लगाए। ठीक है ना, आज भी मदीना तैयबा के अंदर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्ह ने जो बिल्डिंग्स, जो इमारतें वक्फ करी थी, वो आज भी वक्फ है। आप एक होटल पे जाएं, होटल के ऊपर लिखा हुआ है वक्फ लिल उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, राइट,
उसका नाम भी है
उसका
नाम
नाम ही है ये, उस्मान रजी अल्लाह तआला का वक्फ क्या हुआ होटल है। 1400 साल गुजर गए लेकिन वो माशाल्लाह अभी तक ठीक है। और इसी तरह कुआं वक्फ कर दिया या और कोई चीज ऐसे कर दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने भी इसका इंतजाम अभी तक किया हुआ है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी वक्फ का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, बहरहाल, तो ये बात इतनी अहम क्यों है कि हम इस बात को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि दिस इज वन मोर पॉइंट ऑफ यानी क्या कहते हैं डाउट। ठीक है, जो कि इस्लाम के जो दुश्मन होते हैं वो सहाबाए कराम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि सहाबाए कराम ने जो है ना ये काम सही नहीं किया, नऊज़ुबिल्लाह। ठीक है ना, तो हम पीछे भी इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा सीरियस जो वो सहाबा इकराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं क्या था, कि जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सहाबा इकराम ने बजाय इसके कि नबी अलैहिस्सलाम की तदफीन करते, वो लग गए हुकूमत के झगड़ों के अंदर, सियासी झगड़ों के अंदर लग गए। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से सहाबा इकराम के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं था, बल्कि असल मसला ये था कि उम्मत को जो है वो किसी अमीर के, किसी लीडर के खिलाफ छोड़ के बगैर छोड़ने का मतलब ये था कि उसको शैतान के हवाले कर दिया जाए, ठीक है ना। और शैतान ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम की सारी मेहनतों के ऊपर पानी फेर देना था, और इख्तलाफ पैदा करके और लड़ाइयाँ पैदा करके फिर सारा का सारा बेड़ा गर्क कर देना था। तो सहाबा कराम को इस बात का अच्छी तरीके से इल्म था, इसी वजह से तो वो सहाबी भी थे, है? इसी वजह से तो वो सहाबी भी थे, कि ये कोई थोड़ी था कि वो अब मुसलमान होए और उसके बाद फिर जो है ना वो कोई जो है वो उधर चला गया और जा करके नमाजी बन गया, कोई उधर चला गया मक्का मुकरमा जा करके हाजी बन गया, है? कोई उधर चला गया और जाकर जिहादी बन गया, ठीक है ना, और अपना अपना जिहाद कर चले जा रहे हैं, उधर जो है वो नमाज पढ़े चले जा रहे हैं, इधर जो है वो जकाती बन गए वो जकात दिए चले जा रहे हैं, इधर हाजी बन गए वो हज किए चले जा रहे हैं। नहीं, सहाबा सहाबा क्यों बने? कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ करके रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हज करो तब मैं हज करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नमाज पढ़ो तब मैं नमाज पढ़ूंगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जिहाद करो तब मैं जिहाद करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया 5 वक्त तुमने नमाज पढ़नी है, अब मैंने 5 वक्त नमाज पढ़नी है दिन के अंदर, फर्ज है मेरे ऊपर, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे तहज्जुद पढ़ो तो मैंने तहज्जुद पढ़नी है, नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे ये करो तो ये सहाबी बनते हैं ना। तो सहाबी तो जब तक कोई जिसके आप सोबत इख्तियार करें वो ना हो तो फिर आप सहाबी कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको पता था कि जब तक शेख ना हो तो फिर शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है, वो बर्बाद कर देता है। तो ये मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, ये सबसे खतरनाक मसला क्यों था जिसको के इस्लाम के दुश्मन सहाबा कराम के खिलाफ जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका जवाब देना सबसे ज्यादा अहम क्यों है, या ये समझ लें कि इस बात को इस्तेमाल करके वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को गुमराह कर सकते हैं, सबसे ज्यादा क्यों, इनसे पूछ।
क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो सहाबा के थ्रू ही आया है, और अगर उनका क्रेडिबिलिटी खराब कर दिया
नहीं
हमने।
नहीं मेरा मतलब कहने का यह है, मैं सवाल दोबारा से कोशिश करता हूँ, कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम की वफात के ऊपर सहाबा कराम के इस अमल को, ठीक है ना, वो क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है इस्लाम को खराब करने के लिए, सहाबा को जो है वो बदनाम करने के लिए, वो क्यों इस चीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है?
कि वो अपने अपने
आपने एक लफ्ज जो है ना उसमें असल में जवाब जो है वो उस एक लफ्ज के अंदर है, कोई और? क्योंकि ये जो मसला है ना, ये है मोहब्बत का मसला, ठीक है ना, ये है मोहब्बत का मसला ये। और मोहब्बत क्या चीज होती है? मोहब्बत मोहब्बत क्या चीज होती है? हाँ, दुनिया की मोहब्बत तो वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना। मोहब्बत जो है ये एक जज्बा होता है, मोहब्बत क्या होता है, ये एक इमोशन होता है, इमोशन। अब बात समझ में आई, इमोशन जज्बा। तो अब इमोशन से क्या लफ्ज निकलता है? इमोशनल। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मसला है, ये एक बहुत बड़ा जज्बाती मसला है, ठीक है। कि देखो नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन देखे देखो जो दुश्मन होगा ना वो फिर क्या कहते हैं उसको, बात को मिर्च मसाला लगा करके बयान करता है, ठीक है ना। तो मिर्च मसाला लगा करके इस वाकये को कैसे बयान किया जा सकता है? नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, देखो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब पड़े हुए हैं बेयारो मददगार, अकेले, और सब छोड़ छाड़ करके चले गए, राइट, सब छोड़ छाड़ करके चले गए और हुकूमत के लिए लड़ रहे, राइट। अब हमारे लिए क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं इंसानों में, मखलूकात में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से बढ़कर के कोई दूसरी चीज ही नहीं, राइट। जब तक हम नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ना करें हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। और नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए जो कुछ किया तो हमारे लिए लाजमी है कि हम रेसिप्रोकेट करें इस मोहब्बत को। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ जज्बाती लगाव है ना मुसलमानों को, ठीक है। तो अब जज्बाती जहां पर एक मामला आ जाता है ना, अब वहां पर उसको उसको मिसयूज करना, उसको एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान हो जाता है इस जज्बाती ताल्लुक की वजह से। बात समझ में आ रही? जैसे अम्मी अबू के साथ जज्बाती ताल्लुक होता है ना, तो अब जो है ना शैतान कहते हैं, हाँ देखो अब ये तुम्हारे अम्मी अबू हैं, तो अब ये तुम्हें अगर कोई गलत काम करने को कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, है तो तुम्हारी अम्मी अबू, देखो तो इन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है ना, तो अब वो गलत काम भी मान लो इनकी, ठीक है। तो इस तरह से वो जज्बाती ताल्लुकात को जो है ना शैतान इस्तेमाल करता है, ठीक है। जज्बाती ताल्लुक जहां भी आ जाएगा ना, जज्बात के अंदर क्या होता है, जब इंसान के ऊपर जज्बात गालिब आ जाते हैं तो क्या चीज मगलूब हो जाती है, अकल मगलूब हो जाती है उस वक्त, ठीक है ना। जब जज्बात गालिब आ जाते हैं अकल मगलूब हो जाती है, अब वो स्ट्रेट थिंकिंग कर नहीं सकता, ठीक है। इस वजह से शैतान को ये बात अच्छी तरीके से पता है, वो हमेशा जज्बात को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम की वफात का जो वाक्य है ना, ये इंतहाई जज्बाती मसला है, ठीक है ना। तो ये बात हम कर चुके। सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा जज्बाती मसला है वो क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बाद फिर किसकी मोहब्बत आती है दीन इस्लाम के अंदर, है अहले बैत की, ठीक है। अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों की, ठीक है ना, घर वालों के साथ अकीदत, घर वालों के साथ है। अब देखें हजरत जी, राइट, हजरत जी के तो बहुत सारे साहब हैं, बहुत सारे जो है वो उनके खुलफा हैं, बहुत सारे उनके सोहबत में रहने वाले, साहबा तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते लेकिन सोहबत में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मोहब्बत हजरत जी के घर वालों के लिए है, उनके साहिबजादा साहिब के लिए मोहब्बत है, उनके जो है वो अम्मा जान के लिए मोहब्बत है, उनके जो माशाल्लाह पोते के लिए मोहब्बत है, उनके पोतियों के लिए मोहब्बत है, ये अहले बैत है भाई, राइट। अब बड़े बड़े खुलफाए, बड़े बड़े आलिम है, बड़ा बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, नहीं, अहले बैत जो है ना इनके साथ मोहब्बत जो है बस ये, इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। तो अहले बैत के साथ ताल्लुक यानी घर वालों के साथ जो ताल्लुक होता है ना, ये फिर जज्बाती ताल्लुक होता है, ये जज्बाती ताल्लुक होता है। नबी अलैहिस्सलाम के भी अहले बैत के साथ हमेशा उम्मत को एक बड़ा गहरा जज्बाती ताल्लुक रहा है, इमोशनल ताल्लुक रहा है, ठीक है ना। अब शैतान को ये बात पता है, ठीक है, क्योंकि इल्म में शैतान जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा बहुत है, ठीक है, तो उसको पता है। तो इस वजह से उसने फिर इस अहले बैत के साथ मोहब्बत वाले ताल्लुक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो ये फिदक का मसला भी ये मोहब्बत वाला मसला है, ये भी इमोशनल मसला है, ठीक है। क्योंकि इसमें हुआ क्या कि हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो वो जो बाग था ना फिदक का बाग, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की बज़ाहिर मिल्कियत थी, अगरचे कि नबी अलैहिस्सलाम उसको वक्फे लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो अब ये बात जो है वो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, वाहिद वही बेटी रह गई थी, बाकी तीन बेटियों का तो इंतकाल हो गया था, बेटे जो थे उनका तो बचपन में इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खलीफा बन गए, और उनसे फरमाया कि ये जो फिदक का बाग है ये तो मेरे वालिद की मिल्कियत था, ठीक है ना, तो अब जो है ना ये विरासत में मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं ही उनकी वाहिद औलाद हूँ, राइट। बेटा तो कोई है नहीं, बेटी तो कोई है नहीं, बस सॉरी और तो कोई है नहीं, तो फिर बेटी को मिलता है, ठीक है ना, विरासत का हक जो है। तो उन्होंने कहा जी ये तो फिर मुझे मिलना चाहिए, तो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है ना, अब मैं जो हूँ वो इसका इंतजाम करूंगी जैसे मेरी मर्जी होगी। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आयशा बेटी को थोड़ी थी, आयशा तो बीवी थी ना, ठीक है, तो बीवियों का जो है वो बहुत छोटा सा हक होता है, ठीक है ना। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम के पास जो जमीनें थी ना वो सिर्फ फिदक की जमीन नहीं थी बल्कि और भी जमीनें थी। नबी अलैहिस्सलाम की मिल्कियत में एक जो है वो बनू नुज़ैर की भी जमीन थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, ठीक है, मदीना मुनव्वरा की जायदाद में से बनू नुज़ैर की जमीन जो कि अल्लाह ताला ने आपको बतौर फई के अता फरमाई थी, ठीक है ना, इसका भी जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। और नबी अलैहिस्सलाम इसकी जो आमदनी होती थी उससे हथियार, घोड़े और जमाने जहाद वगैरह करते थे। खैबर की कुछ जमीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और तरीके से मिली थी, और तीसरी जो है ना ये फिदक की जमीन थी, ठीक है, जो कि फतेह खैबर के बाद आपको अहले खैबर से सुलहन हासिल हुई थी। ठीक है, तो फातिमा आई और मतलब एक वारिसा थी ना, वो बेटी थी ना, तो बेटी जो होती है वारिस होती है बाप की, तो आई और उन्होंने मुतालबा किया। बीवियां आई ही नहीं, उन्होंने मुतालबा ही नहीं किया, उनको हो सकता है ये बात पहले से पता हो जो कि अबू बकर सिद्दीक ने फातिमा को बताई। तो ये आई तो फातिमा रज़ियल्लाहु ने जब अबू बकर सिद्दीक से बात करी ना, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, ठीक है ना, कि जो नबी होते हैं ना तो उनकी कोई मिल्कियत नहीं होती, उनकी कोई विरासत नहीं होती, ठीक है ना, यानी ना उन्होंने पीछे से कोई फिजिकल प्रॉपर्टी अपने बड़ों से विरासत में ली होती है, और ना जो है वो अपने छोटों को कोई विरासत में चीज देते हैं। ठीक है ना, हमारा जो विरसा है ना, यानी हमारी जो इनहेरिटेंस है वो क्या है? इल्म, नॉलेज, ठीक है ना, हमारी हमारा विरसा तो नॉलेज है, इल्म है, ठीक है ना, जो कि अल्लाह ताला से हम हासिल करते हैं और हम आगे उम्मत को वो पहुंचाते हैं। तो ये है हमारे हमारी इनहेरिटेंस। ठीक है, फिजिकल चीजें, ये दुनिया की चीजें, घोड़े या जो है वो खेत या बाग, ये सारी चीजें हमारी इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, तो फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के फरमाते हुए सुना कि हमारा कोई वारिस नहीं होगा, जो कुछ हम छोड़ के जाएंगे ना वो सदका होगा। ठीक है, यानी सवाब के लिए जो है वो गरीब गुरबा के ऊपर उसको खर्च किया जाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम को जिस तरह से करते हुए मैंने देखा है ना, मैं वैसे ही करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम इसको वक्फ के तौर पे इस्तेमाल करते थे, गरीब गुरबा के ऊपर खर्च करते थे, तो मैं भी इसको गरीब गुरबा के ऊपर ही खर्च करूंगा। लेकिन चूंकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा है कि वो इसकी आमदनी को अपनी फैमिली के ऊपर खर्च किया करते थे एज नंबर वन प्रायोरिटी, सबसे पहले अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते थे, तो मैं भी नबी अलैहिस्सलाम की फैमिली के ऊपर ही खर्च करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी गरीब मुसलमानों के ऊपर खर्च करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम जैसे किया वैसे ही मैं भी करता रहूंगा, जैसे कि आप पहले भी सुन चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का मकसद सबसे पहले यही था कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने दीन हमें दिया है वैसे ही उसको प्रिजर्व करके रख। ठीक है, तो अब इस मौके के ऊपर जब इन्होंने फरमाया ना, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको अच्छी तरीके से ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो ये ऐसे मुझे क्यों कह रहे हैं, मैंने एक चीज कही है तो मुझे बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, उनको बात समझ में नहीं आई, वो थोड़ा सा नाराज होकर के घर चली। ठीक है, वो नाराज होकर के घर चली गई। अबू बकर सिद्दीक रतान बाद में उनके घर गए, राइट, अली रतान से इजाजत लेकर के उन्होंने फातिमा रतान से बात करी और उनको बहुत प्यार से समझाया। उस वक्त फातिमा रजान अनहा जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजान से राजी हो गई, खुश हो गई, उनको बात बाद में समझ में आ गई। होता है ना भाई, ठीक है ना, कोई बात आपको एक दफा में समझ में ना आई दूसरी दफा में समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रतान को पहली दफा बात समझ में आई थी, उमर अतार ने फरमाया ना कि भाई आप जमा कुरान का वगैरह नहीं है तो सही नहीं है, मैं कैसे वो कर लूं, लेकिन उमर अतार लगे रहे लगे रहे लगे रहे, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बात समझ में आ गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का लेवल तो कोई दूसरा उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु तो फिर राइट खातून थी, और घर में रहने वाली खातून, और ऐसी खातून के जिनको ना कभी किसी ने देखा ना उन्होंने कभी किसी को देखा, ऐसी पर्दे वाली खातून। ठीक है ना, तो उनको अगर ये बात पहली दफा में समझ में नहीं आई तो कौन सी ऐसी मुश्किल वाली बात हो गई, लेकिन बाद में समझाया उनको बात समझ में आ गई और ये मसला बिल्कुल हल हो गया। लेकिन जाहिर है ये एक इमोशनल मसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई और उन्होंने बात करी और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और जो है ना फिर वो नाराज होकर के चली गई, और एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी जिससे नाराज हो उससे मैं भी नाराज हूं। देखो फिर इसका मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना ये इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे नाराज थे। तो इस तरह से दुश्मन का काम ही ये होता है, ठीक है ना, कि वो करता है हमेशा इस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। तो शैतान भी ये काम करता है, और शैतान के जो पान मानने वाले काफिर होते हैं वो भी ये काम हमेशा से करते हैं। बाकी इसकी थोड़ी और तफसीलात हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी कसस नबीन की क्लास का वक्त हो चुका है। खुदावाना अलहमदुलिल्लाह, पानी के लिए तो बैठ जाता हूँ नहीं तो फिर
Recording stopped.
सलाम।